ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತೇರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ 8 ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 39. ಪ್ರಾಣೈಃ ಸ್ವೈಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಪಾಂತಿ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈಃ ಬದ್ಧವೈರಿಷು ಭೂತೇಷು ಮೋಹಿತೇಷು ಆತ್ಮಮಾಯಯ. ಪ್ರಾಣೈಃ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಾಂತಿ ಪ್ರಾಣೈಃ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಾಂತಿ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈ ಬದ್ಧವೈರಿಷು ಭೂತೇಷು ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಮೋಹಿತೇಷು ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತೇಷು ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ. ಪ್ರಾಣೈಃ ಸ್ವೈಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಪಾಂತಿ ಪ್ರಾಣೈಃ ಸ್ವೈಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಪಾಂತಿ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈಃ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈಃ ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಮೋಹಿತೇಷ್ವಾತ್ಮಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತೇಷ್ವಾತ್ಮಮಾಯಯಾ. ಪ್ರಾಣಿನೈಸ್ವೇ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಾಂತಿ ಸಾಧವಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈಃ ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಮೋಹಿತೇಷ್ವಾತ್ಮಮಾಯಯಾ. ಪ್ರಾಣಿನಾಸ್ವಪ್ರಾಣಿನ ಪಾಂತಿ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈ ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಮೋಹಿತೇಷು ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ವಪ್ರಾಣಿನ ಪಾಂತಿ ಸಾಧವಾಕ್ಷಣಭಂಗುರೈ ಬದ್ಧವೈರೇಷು ಭೂತೇಷು ಮೋಹಿತೇಷು ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ.
ಮಾತಾಜಿ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ವಾಲಾ ಬುಕ್ ಹೈ, ಇಸ್ಲೇ ಮೈ
शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हिंदी में व्याख्या करेंगे। अच्छा हिंदी है, अच्छा ठीक है। प्राणे ही प्राणों से स्वयं ही अपने प्राणिनः अन्य जीवों की पांति रक्षा करते हैं साधवः भक्तगण क्षणभंगुरैः नाशवान् बद्धवैरेषु स्वयं ही शत्रुता में लगे भूतेषु जीवों में मोहितेषु मोहग्रस्त आत्मायया भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य यह वैष्णव का लक्षण है, परदुख दुखी। बद्धात्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनाने की शिक्षा देता रहता है, देता रहने का उनका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं, अतएव ऐसे जीवों की तुलना संसार दावा से जंगल की अग्नि से की गई है जो स्वतः लग जाती है। शिवजी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी लोग को भी भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिवजी के सिद्धांत का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वाले का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय चार हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिवजी रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, निसंदेह हम देखेंगे कि शिवजी ने मानवता के लाभ हेतु सारा विष पी लिया। ओम ज्ञानविरंदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामैहं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगिराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हर गुरुवार को इधर हिंदी में क्लास होता है, इसलिए आज हिंदी में प्रवचन होगा। प्रसंग चल रहा है शिवजी ने किस प्रकार कोलाहल नामक विष को उन्होंने पीकर सारा संसार को उद्धार किया, सारा संसार को बचाया। अभी जो लीला चल रहा है वह है समुद्र मंथन की लीला। इस अध्याय में भगवान स्वयं प्रकट हुए कूर्म रूप में। कूर्म रूप में प्रकट होकर मंदार पर्वत को धारण किए, जिसके द्वारा उनको मंदार पर्वत को एक स्थिरता मिली, जिस आधार पे वो समुद्र मंथन शुरू हुआ। कूर्मदेव जो है सारे संसार के आधार शक्ति है। आधार और आधेय दो शब्द होता है। आधार मतलब जिसके ऊपर सारा चीज सिखा हुआ उसको आधार कहा जाता है, और जो चीज सिखा हुआ है उस वस्तु के ऊपर उसको आधेय कहा गया है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद को भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्रय तत्व और आश्रित तत्व, वैसे ही भगवान स्वयं श्रीकृष्ण स्वयं रूप में वो आश्रय तत्व है, और जितने भी संसार में वस्तु है वो आश्रित तत्व है। लेकिन इस भौतिक जगत में वही भगवान श्री कृष्ण वो आधेय के रूप में, आधार शक्ति के रूप में वो निवास करते हैं। किस रूप में? किस रूप में? वो कूर्मदेव के रूप में। ये 14 भुवन है, ये 14 भुवन टिका हुआ है कूर्म के ऊपर। नीचे जो है कूर्मदेव है, और जरा सा भी उनके अंदर थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कुछ खुजली करना है मुझे या कुछ थोड़ा सा हिलते हैं तो भूकंप इत्यादि आता है। तो हमारे जो भौतिक जीवन का भी आधार है कूर्म, कूर्म विग्रह का प्राकट्य इस अध्याय में हुआ। पूरा ब्रह्मांड में कूर्म देव का विग्रह केवल एक ही जगह है, कूर्म क्षेत्र में हुए। दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जब गए थे उधर उन्हें कूर्म देव का विग्रह को उन्होंने आराधना किया। वैसे लोग सोचते थे कूर्मदेव को देख के, लोग सोचते थे शिवजी है, शिवजी की पूजा करते थे, क्योंकि कूर्मदेव का थोड़ा सा भाग ऊपर की भाग रहता है, शिवलिंग जैसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब रामानुजाचार्य को भगवान की योगमाया शक्ति के द्वारा जगन्नाथ जी ने स्वयं रामानुजाचार्य को कहा ठीक है आपको स्थानांतर कर देता हूं, जगन्नाथपुरी से उन्होंने स्थानांतर किया तो कूर्म क्षेत्र में पहुंच गए रामानुजाचार्य। तब उठ के देखे तो उन्होंने देखा सभी लोग बेलपत्र इत्यादि लेके जा रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं। लेकिन रामानुजाचार्य स्वयं तो इतने भगवान के महान भक्त आचार्य हैं, वो समझ गए कूर्मदेव नहीं है, वो शिवजी नहीं है, बल्कि कूर्मदेव विष्णु विग्रह है। यानी कूर्मदेव और शिवजी का संबंध पता नहीं पहले से ही है ऐसा लगता है, एक कन्फ्यूजन जो है क्योंकि कूर्मदेव का विग्रह भी शिवजी जैसा रूप लोग प्रार्थना करने लगे। तब रामानुजाचार्य जाके सबको समझाया, शास्त्रों का प्रमाण से समझाया कि ये कूर्म क्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं है, वैष्णव क्षेत्र है, ये शिवजी का विग्रह नहीं बल्कि कूर्म विग्रह करके स्थापना किया। तो उधर बहुत सारे कूर्म विग्रह प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो परम आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके पिताजी भक्तिनोद ठाकुर ने वक्षिणाथ ठाकुर को कूर्म विग्रह प्रदान किए थे। क्योंकि भक्तों के संग जब नहीं होता है उस समय भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, मन अस्थिर हो जाता है, माया का प्रभाव से मन अस्थिर हो जाता है। तो भक्ति में भी या अन्य अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए कूर्मदेव का उपासना, कूर्म मंत्र का उपासना करना बहुत जरूरी है। स्थाने शतम शुचिगताम धनुवांग मनोभिर, हमारा स्थान अगर ठीक नहीं है, मन विचलित होता है, कूर्मदेव का स्मरण करना चाहिए। कूर्मदेव का शालिग्राम का उपासना कुछ लोग करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे मंदिरें हैं कूर्मदेव का विग्रह नहीं बल्कि कूर्म शालिग्राम को पूजा किया जाता है। अगर इसका मन भूत प्रेत के द्वारा प्रभावित होता है तो कूर्मदेव का उपासना करते हैं। वैसे कूर्मदेव की गायत्री है, कूर्मदेव का स्तोत्र भी है, अनेकों अनेकों शास्त्र कूर्म पुराण है। तो कूर्मदेव का प्राकट्य इस अध्याय में हुआ, इससे थोड़ा सा कूर्मदेव का स्मरण किया हमने। और जैसे मंदार पर्वत को मंथन कर रहे हैं, सबसे पहला क्या प्रकट हुआ? जहर प्रकट हुआ। आप कुछ भी अच्छा काम करने जाएंगे तो सबसे पहला जहर ही प्रकट होता है। खास करके आध्यात्मिक कार्य अगर प्रकट करोगे, कोई भी अच्छा कार्य करो, कोई भी शुभ कार्य करो, सबसे पहला क्या प्रकट होता है? जहर प्रकट होता है। सबसे पहला तकलीफें आती हैं, बहुत सारे अनहोनी चीजें होती रहती हैं। ये स्वभाव है। जैसे आप जप करना शुरू करोगे तो कभी कभी लोग कहते हैं, प्रभु जी जप करने से पहले मैं बहुत अच्छा था, जब करना शुरू किया मेरा मन में बहुत सारे कामुक वासनाएं आ रही है, अब मैं ज्यादा गंदा हो गया हूं। ऐसा नहीं है। जब झाड़ू मारोगे, बहुत साल से जब गंदगी पड़ा रहता है, ऐसे लगता है हाँ इतना ज्यादा गंदा नहीं है, ठीक है। जब झाड़ू मारोगे तो पता लगता है वो धूल इतना उड़ता है कि ऐसा लगता है कि अभी ज्यादा गंदा हो गया है। ऐसा ये स्वभाव है। जब भी कोई भी अच्छा कार्य का संकल्प लो, मंदिर बनाने का संकल्प लो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, कोई भी अच्छा काम करने जाओ संसार में, शुभ कार्य करने जाओ, चाहे भौतिक स्तर में हो या आध्यात्मिक स्तर में हो, कोई भी कार्य करने जाओ, सबसे पहला जहर निकलने वाला, सबसे पहला कष्ट आएगा। तो समय सारे देवता लोगों ने सोचा शिवजी का शरण लेते हैं, शिवजी आचार्य हैं, चलो उनके पास जाएंगे, महान वैष्णव उनके पास जाएंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव क्या है, उनको केवल अच्छा अच्छा चीज चाहिए। जितने भी समुद्र मंत्र में अच्छे अच्छे चीज उत्पन्न हुए सब कृष्ण लेके गए, लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी उनको खुद लेके गए, लेकिन बाकी सब अन्य लोगों को दे दिया। खासकर जब जहर की बात है शिवजी को बुलाया, शिवजी का स्वभाव है नेचर। इसलिए गुरुजी जो है और कृष्ण गुरुजी को रखते हैं, गुरु तत्व को रखते हैं। क्यों? जब आशीर्वाद देना होगा तो क्या करेंगे? भक्तों के अंदर गुणों को देख के उनको आशीर्वाद देना होगा तो कृष्ण करते हैं। गुरु क्या करते हैं? भक्तों के अंदर दोषों को देखते हैं, तभी तो उनको ठीक कर सकते हैं। दोष देखने की बात आई और उनको सजा देने की बात है, उनको शासन करने की बात आई, उनको कभी डांटने की बात आई, तो कृष्ण ने क्या किया? गुरु जी को रखा। जैसे एक कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो एक मालिक होता है, मैनेजर को रखता है। जो कंपनी में कभी किसी को प्रमोशन देना है, किसी को सलाह ना करना है, कोई अच्छा करना है, सबको शाबाशी देना है, अच्छा नाम कमाना है, अच्छा नाम लेना है, तो स्वयं मालिक आके सबको देते हैं, आज से आपका इंक्रीमेंट हो गया हो गया है। लेकिन किसी को निकालना है, किसी को काटना है, किसी को दंड देना है, तो बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, मैनेजर तुम करो। उसी प्रकार भगवान के इतने महान सेवक के शिव जी, तो कृष्ण का सेवा इतना परफेक्टली करते, इतना जिम्मेदारी के साथ करते हैं। वो भी कौन सी सेवा? जितने भी नेगेटिव सेवाएं होती वो सब सेवा भगवान के हित के लिए शिवजी स्वयं करते हैं। तो खास करके जब ये विष प्रकट हुआ, सारे देवता लोग अब काफी प्रार्थना करने लगे। आपने ये पिछले वाला जो श्लोक है, खास करके 35 वाला श्लोक है, उसमें देवता लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आपके तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। एतत् परम परस पश्यमामो न परम ते महेश्वरः। कोई व्यक्ति न परम, आपके जो तत्व है उसको समझना मुश्किल है। शास्त्र में कहा गया है गुरु तत्व, शिव तत्व, धाम तत्व और राधा तत्व, ये चार तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है। अभी वो भगवान है या जीव है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। शिवजी जो है ना भगवान है ना जीव है, एक तरीके से देखा जाए ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान है। अगर कोई ऐसा एक तरीके से देखा जाए ऐसा लगता है अरे तो मोहित हो जाते हैं। और गुरु तत्व भी ऐसा ही है, गुरु तत्व एक तरीके से देखा साक्षात हरित्व है ना, लेकिन किंतु प्रभो प्रिय तस्या। और धाम भी ऐसा ही है, हम तो धाम का महिमा इतना सुनते हैं शास्त्रों में, धामवासी का महिमा इतने शास्त्रों में सुनते हैं, लेकिन जब जाते तो दिखता नहीं है, तो इसलिए विचलित होना स्वाभाविक है। वैसे ही शिव तत्व भी ऐसा है, वैसे ही राधा तत्व भी है। राधा रानी का विषय में हम सुनते हैं, राधा रानी का महिमा का गुणगान इतना शास्त्रों में किया गया है। वैसे देखा जाए एक साधारण सी स्त्री जब कि उस पुरुष के प्रेम में विरह में रोना शुरू कर देती है, मान आता है, क्रोध हो जाता है, ये सब राधा रानी में दिखाई पड़ता है, इसलिए समझना मुश्किल है। तो ये चार तत्व हैं, उनको समझना मुश्किल, इसी बात को देवता लोग कहते हैं। बाद में वो लोगों ने कहा कि खाली आपकी उपस्थिति मात्र से, कि मृद्यमाना ही लोकस्य मृदा मतलब आनंद, सारे लोग जो हैं आनंद को अनुभव करते हैं। व्यक्तिस्ते व्यक्त कर्मणः, आपका व्यक्तित्व का उपस्थिति मात्र से सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ वर्ग के जीव नहीं, सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी का ये स्वरूप है, भगवान शिवजी का जो स्वभाव है वो जैसे जैसे जहां जहां उपस्थित होते हैं उनको दर्शन करने मात्र से सारे जीव संतुष्ट हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना ही मात्र हमको दिखाई पड़ता है। आपके तत्व के विषय में हम तो जानते नहीं है, इतना जरूर जानते हैं आपको दर्शन करने मात्र से सभी जो जीव है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवजी इन प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। शिवजी जो है उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। सारे देवता लोग शिवजी को जैसे प्रसन्न किए, शिवजी अभी विष को जहर को पीने वाले हैं। तो अगर कोई इतना बड़ा कार्य जहर को पीना, जहां प्राण को भी कष्ट हो, इस प्रकार का कार्य करने से पहले, इस प्रकार का साहस करने से पहले उनकी पत्नी पार्वती को संबोधित कर रहे हैं। श्री पार्वती को कहते हैं, हे भद्रे अहो अहो बत भवान्येतत्, हे भवानी, सुनो, भवानी पार्वती का नाम है, प्रजानाम पश्य विशेषम, देखो पश्य, देखो प्रजानाम, इन सारे जीवों का जो तकलीफ है उनको देखो, पश्य देखो, क्षीरोद, ये क्षीर का क्षीर सागर का जो मंथन करने लगे उस समय मंथन उद्भूत कालकूट उपस्थितम, ये कालकूट के वजह से सारे जो जीव है बहुत तकलीफ में है। तो शिवजी का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते परीक्षित मानते, हे राजा सुनो, तद्दीक्ष व्यसनम तासाम कृपया वृषपीड़िता, उनके बहुत पीड़ा थी। कालकूट जहर से केवल देवताओं को नहीं, सारे संसार में लोग को बहुत अग्नि, लोगों को दुख लग रहा था। सर्वभूत सुहृद देव यजमाह सतीम प्रियाम, सर्वभूत सुहृद देव, सारे जीवों के लिए वो सुहृद है, सारे जीवों के मित्र है शिवजी। और उनके वैसे शिवजी जो है उन्होंने पार्वती को इस प्रकार कहा, पार्वती को दिखाया, पश्चा पश्चा जरा देखो, देखिए आपको कुछ नहीं लग रहा है क्या, सुनो, आसाम प्राण पशुनाम विधेयम अभयम ही मे, तुमने कहा कि मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, सभी जीवों का सभी प्राणियों का अभय प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य होने के नाते मैं इस कर्तव्य को जरूर पूरा करूंगा। एतावान ही प्रभुर्थो यद्दीन परिपालयन, यद्दीन परिपालयन, दीनों को परिपालन करना मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को मैं निश्चित रूप में वो पालन करूंगा। आगे वाला श्लोक आता है, खास करके शिवजी के विषय में गुणगान तो अनेकों अनेकों शास्त्रों में हुआ है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने शिवजी की महिमा को गान करते हुए उन्होंने चैतन्य अष्टकम को उच्चारण किया। हम देखते हैं किस प्रकार चैतन्य अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने शिवजी का गुणगान किया। शिवजी का गुणगान करते हुए सबसे पहला श्लोक में कहते हैं, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूताधिनाताय मृदाय नित्यम गंगतरंगित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय, चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय, गौरी यानी इधर भवानी पार्वती, उनके आंखों का उत्सव है। यानी शिवजी इतने सुंदर है, उनका स्वभाव इतना मधुर है, उनको गौरी हमेशा शिवजी का दर्शन करती रहती है और बड़ा आनंद को अनुभव करती रहती है। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय, तीनों दशाओं के जो देवता है वो देवताओं के ईश्वर है। तीन दशाएं तीन गुण तीन काल को भी सूचित करता है, भूत भविष्य वर्तमान, उनका भी ईश्वर है। भूतादिनाताय मृदाय नित्यम, भूतादिनाताय मृदाय नित्यम, तो कौन है शिव जी? भूतादिनाथ, सारे भूतगणों के नाथ है। भूत शब्द का अर्थ क्या है? जो चीज उत्पन्न हुआ है उसको भूत कहा गया है। वैसा नहीं कि पंच महाभूत है। एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी हमने भूत तो सुना है लेकिन ये पंच महाभूत को भूत क्यों बोला गया? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो वो एक भूत का अर्थ है, वो कुछ होता है ना प्रभु जी, भूत भूत पकड़ लेता है, जो जीव है जो जिसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है उसको भूत कहा गया है, यानी शरीर से उत्पन्न हुआ उसको भूत कहा गया, यानी स्थूल शरीर को छोड़ के जो उत्पन्न हुआ उसको भूत कहा गया है। कोई भी चीज उत्पन्न होता है, जीव भूतम महाबाहो, जीव भी उत्पन्न हुआ है, और ये जो जड़ तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है प्रधान भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इससे उसको भूत कहा गया है। तो खास करके सारे भूतों के ईश्वर है शिव जी, यानी पंचमहाभूतों के सूक्ष्म तत्वों के ईश्वर है। जितना भी भौतिक जगत के सारे एलिमेंट्स है, पंचमहाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचमहाभूतों के ईश्वर है। साथ साथ में भूतादि नाथाय, आप जिनको भूत भूतगण कहते हैं, भूत प्रेत, पिशाच, भूत प्रेत इत्यादि, उनको भी वो नाथ है। आप कह सकते हो कि शिवजी जो हैं उनके नाथ क्यों हैं? क्योंकि बाद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सर्व गुरवो नमो नमः, मैं वैसे शिवजी को प्रणाम करता हूं जो सारे लोगों के गुरु है। हर प्रकार के जीव के गुरु है शिवजी, हर प्रकार के जीवों को उद्धार करने के विचार करते हैं। जैसे हमारे जो इस्कॉन यूथ फोरम के टीचर्स है, वो देखते हैं सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, अरे ये कॉलेज ठीक नहीं, इधर सब भूत प्रेत रहते हैं कॉलेज में, हम IIT में जाएंगे या हम कोई अच्छा NIT में जाएंगे, उन्हीं लोगों को प्रचार करने के, इन लोगों को क्या प्रचार करना। लेकिन शिवजी ऐसा नहीं सोचते। शिवजी क्या सोचते हैं? हरेक व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाने की सामर्थ्य केवल शिवजी के पास है। क्या आप सोच सकते हो, ठीक है आपको बोला जाए चाहो शमशान में जाओ सभी भूत पिशाचों उन सबको वैष्णव बनाओ, जाओगे आप? डर जाओगे, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होने, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं सबसे अच्छा जो कॉलोनी है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, उधर जाके प्रवचन दूंगा। लेकिन शिवजी ऐसा नहीं करते। वो सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स होता है, नारद जी जैसे महान महान भक्त है उनको भी वो प्रचार करते हैं, और साथ साथ में अन्य भूत प्रेत है उनको भी प्रचार करते हैं। इसलिए आगे वाले श्लोक में एक जगह यही इसी शिक्षा यही शिवाष्टकम है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री नारदादे सततम सुगोप्य जिज्ञाति सव्यो वर प्रदाय तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिवाय सर्व गुरवे नमः, शिवजी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन कौन आते हैं? नारदादे सतत सुगोप्या, नारद मुनि जैसे महान महान भक्त है। नारद मुनि कौन है? साक्षात भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। फिर भी नारद जी भी सुगोप्या बड़े गुप्त रूप में शिवजी के पास जाके वो प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासितव्य जिज्ञासा करते हैं। नारदादय, नारद जैसे महान महान ऋषि, देव ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो, महान महान ऋषिगण आके वो भगवान इनके पास आके, शिवजी के पास आके सुगोप्या बड़े गोपनीय प्रश्न पूछते हैं। खास करके नारद पंचरात्र हो, कोई भी पंचरात्र हो, पंचरात्रि वक्ता कोई भी क्यों ना हो, अंततः सारे पंचरात्र विधि की शिक्षा जो है सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने शिवजी से ग्रहण किया। शिवजी जो है दोनों विधि का, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि के आचार्य है। हम जो पंचरात्र विधि के अनुसार पूजा करते हैं, नारद पंचरात्र हो, लक्ष्मी पंचरात्र हो, गरुड़ पंचरात्र हो, 108 पंचरात्रिक ग्रंथ है। भले ही उन पंचरात्रिक ग्रंथों में अनेकों अनेकों वक्ता हुए, वो सारे वक्ताओं ने इसको स्वीकार किया, हमने ये ज्ञान शिवजी से प्राप्त किया। तो सात्विक तंत्र से लेके एकदम बिल्कुल तमसिक तंत्र विधि होता है ना, जिसको काला जादू कहते हैं, उसके भी वक्ता कौन है? शिवजी है। यानी हर प्रकार के जीव को कहीं ना कहीं उनको ने इंगेज करके रखा है, शिवजी का कार्य है। तो वैसे देखा जाए अच्छे लोगों को संभालना या सात्विक लोगों को संभालना बहुत आसान है, शांति से बैठे उन बच्चों को संभालना कौन सी बड़ी बात है, टीचर जाके अच्छे से पढ़ा के आ जाएगा अच्छे बच्चों को। आप जाओ भूत प्रेत जैसे बच्चे होते हैं एकदम नर्सरी में जाओ, खास करके एक जंगल में या कोई एकदम बिल्कुल गांव में आदिवासी इलाके में जाओ, उधर जाके आप बच्चों को भूल पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओ, आपको भी उत्पात मचा के रख देंगे। इधर आप पढ़ा नहीं सकते उसको, है कि वो मुश्किल कार्य है। तो अच्छे लोगों को, सात्विक लोगों को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, पहले से सात्विकता है उनको, आप शास्त्र पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप शांति से बैठ के सुन रहे हो, उस पर कौन सी बड़ी बात है। जाओ अमेरिका जाओ या कहीं दुबई जाओ, पाकिस्तान जाओ, उधर जाके प्रचार करने के लिए प्रयास करो तो पता लगता है वेरी डिफिकल्ट। भारत में वैसे लोग धार्मिक लोग हैं, उनको प्रचार करना आसान है, लोगों के पास कुछ ना कुछ सात्विकता है। तो लेकिन शिवजी हर प्रकार के लोग, नारद जी जैसे महान भक्त होते हैं उनसे लेके जो अन्य जैसे भूत प्रेत जैसे लोग हैं, उनको भी वो प्रदान करते, ज्ञान प्रदान करते हैं। वैसे शिवजी के स्वरूप को वर्णन करने के विषय में दो श्लोक का और उच्चारण करते हैं, क्योंकि श्लोक उच्चारण कर रहे हैं तो कर लेंगे। सुतप्त चामी कर चंद्र नीलम पद्म प्रवालांबुद कांति वस्त्रे सुनृत्य रंगेष्ट वर प्रदाय कैवल्यनाताय वृषभ ध्वजाय। वृषभ के ऊपर बैठे रहते हैं, वृषभ ध्वजा शिवजी का एक नाम है। और क्या धारण किए हैं, वो गोल्डन मोल्टन गोल्डन वस्त्रों को धारण किए हैं, और अनेकों अनेकों जो सुंदर सुंदर उनके जो कमल है उनके जैसा उनका रंग है। ऐसे शिवजी का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। सूर्यांश सूर्या सुधांश सूर्याग्नि विलोचने न, उनका आंख इस प्रकार है, चंद्रमा और सूर्य इनके आंख हैं। तमो विभेदेत जगत शिवाय, तमोगुण को नाश करने वाले हैं शिवजी, जहां हैं उधर तमोगुण का नाश होता है। भले ही शिवजी तमोगुण के अधिष्ठात देव है, लेकिन शिवजी का जो स्मरण करता है वो निश्चित रूप में तमोगुण को नाश करता है। और सहस्त्र शुभ्रांश सहस्त्र रश्मि, उनके शरीर से बहुत सुंदर रश्मि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। सहस्त्र संजीवत वर तेजसेस्तु, उनके शरीर से बहुत सुंदर प्रभा शक्ति उत्पन्न हो रहा है। नागेश रत्नोज्वल विग्रहाय, उनके कंठ में कौन सा क्या धारण किए, नागेश यानी नागेंद्र को धारण किए हैं, वो कौन है, साक्षात अनंत है। शार्दूल चर्मा सुख दिव्य तेजसे, वो चर्म मृग के चर्म को धारण किए हुए हैं और दिव्य तेजसे। सहस्त्रपत्रो परिसंस्थिताय, सहस्त्रपत्रोपरि एक सहस्त्रपत्र के कमल के ऊपर वो बैठे हुए हैं। वरांगदा मुक्त भुजद्वयाय, वरांगदा मुक्त उनके पास बहुत सुंदर कंकण है, और भुजद्वयाय दोनों भुजाओं को बहुत सुंदर है शिवजी का, इनका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सुनुरूप रारंजित पाद पद्म शरत सुधा भृत्य सुख प्रदाय, भगवान के जो गुणगान करते हुए सारे उनके जो भक्त हैं उनको क्या करते हैं, रस प्रदाय कृष्ण प्रेम रस प्रदान पान कराते हैं शिवजी। विचित्र रत्नानुग विभू विचित्र विचित्र रत्नों को धारण करते हैं। प्रेम नाम एवैद्य हरोर्विदेही, और हमेशा वो कृष्ण प्रेम में मग्न रहते हैं। श्री राम गोविंद हरे मुरारे, श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पानमत्त भृंगादिपाकिल दुःख हंत्रे। शिवजी का मुख्य कार्य क्या है वर्णन हुआ है। श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इति, इस प्रकार के नामों को गान कर रहे हैं शिवजी। 2400 घंटा कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं। इत्यादि नामामृत पानम पानमत्तः, पान करते हुए नाम को पान करते हुए मत्तः वो पागल हो रहे हैं शिवजी, और नृत्य करते हैं, और पागल होते हुए नृत्य करते हैं। कभी कभी ऐसा एक लीला आता है शिवजी का, गोविंद का नाम स्मरण करते मदमत होते हुए नृत्य कर रहे हैं। जब नृत्य करते हुए क्या हुआ, वो इतना भाविभोर के नृत्य कर रहे थे, वैसे कुछ वस्त्र को धारण करते करते नहीं, कुछ बचा हुआ वस्त्र को धारण किए थे, कुछ छोटा मोटा वस्त्र को वो निकल गया, नग्न हो गए, नग्न हो गए, फिर हम नृत्य कर रहे हैं। और क्या हुआ, उधर को कुछ भूत प्रेत थे उनके शिष्य, वो देख के हंसने लगे, और शिवजी को बहुत क्रोध आया। क्यों क्रोध आया, आप मेरी भक्ति को नहीं समझ पाते हो, कृष्ण नाम के प्रति आपने अपराध किया,
शिवानंद सेन ने भी अपराध किया था, किसके प्रति? शिवास ठाकुर के प्रति, देवान पंडित ने अपराध किया था इनके प्रति, क्योंकि शिवास ठाकुर इसको सुन के, भागवत सुन के भाव विभोर होते, कृष्ण प्रेम का जो भावों को जो समझ नहीं सकता वो अत्यंत अपराध करता है। ने कहा आप जाओ, आपने जो अपराध किया है, मेरे प्रति अपराध नहीं किया, कृष्ण प्रति अपराध किया, इसलिए शिवजी को प्रिय, सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण के भक्त प्रिय है, और शिवजी को कृष्ण भक्ति प्रिय, और कोई कृष्ण को निंदा करता है उनके ऊपर शिवजी को क्रोध आता है। इसलिए जब इस संसार में असुर भर जाते हैं और उनको शिवजी दो प्रकार दंड देते हैं, एक प्रकार वरदान देके दंड देते हैं, जितने भी असुर हैं वो सब लोग शिवजी को पूजा करते हैं, शिवजी से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। शिवजी क्या सोचते हैं? चलो उनको मैं आशीर्वाद देके मारता हूं। तो रावण हो, भस्मासुर हो, जिन जिन लोगों ने शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया वही आशीर्वाद उनका मृत्यु कारण बना। और दूसरा प्रकार क्या है? इतनी बार भी इतना सुविधा देने के बाद भी कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता है, शिवजी को क्रोध आता है, उस क्रोध में उनको दूसरा आंख खोल देते, सारा जगत को प्रलय कर देते हैं। शिवजी जैसे इतने वैष्णवानाम यथा शंभु, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी बात को कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, महान वैष्णव है। तो जैसे कोई एक ब्रिंग, एक मधुमक्खी, वो मधु को पान करके वो मधुमत हो जाता है, उसी प्रकार शिवजी भी एकदम बिल्कुल कृष्ण नाम को संकीर्तन करते मधुमत हो जाते हैं। कि अब क्या हुआ ये भूत प्रेत, उनको शाप दिया, शिवजी ने बोला बस तुम्हारा चेहरा मत दिखाओ, गेट लॉस्ट। तो शिवजी को इस प्रकार हुआ, तो अभी शिवजी के अलावा और कोई आश्रय तो है नहीं भूत प्रेतों को, तो ये दो भूत थे जिन्होंने हंसा था उनको, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, आप जाओ, मैं क्षेत्र का नाम बताता हूं, वो क्षेत्र है सत्यसार क्षेत्र है, सत्यव्रत क्षेत्र है, उसके उत्तरी दिशा में जाओ, उधर आप खूब खूब आप उसका तपस्या करो, खूब तपस्या करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का तपस्या करो, क्योंकि आपने अपराध कृष्ण के प्रति किया है। तो इन भूतों ने खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, तो आनंद देव प्रकट हुए। आनंद देव प्रकट होके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं शिवजी को साक्षात बुलाता हूं। तो शिवजी को बुला के उन्होंने कहा, आनंद देव ने कहा कि इन दो भूतों को आप क्या करो, इनको आप माफ कर दो, आप अपने पास में ले लो। तब शिवजी ने कहा ठीक है, अब माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर, आपको कृष्ण का सेवा करना होगा। क्या सेवा करना होगा? मैं आपको एक विग्रह प्रदान करता हूं, भगवान से याचना किया, आप एक विग्रह प्रदान किए भूतों को, तो ये विग्रह प्रदान किए। भूत कैसे उन विग्रह को सेवा करेंगे? तो आदि केशव विग्रह को उन्होंने प्रदान किया, केशव जी का विग्रह, और भूत जाके और अनंत सरोवर स्नान करके उन विग्रह को सेवा करके एक बहुत सुंदर शहर का निर्माण किया, और साथ साथ में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। और भूतों ने कहा कि इस शहर का नाम मेरे नाम, हमारे नाम पे होना चाहिए, भूतों के नाम पे होना चाहिए। तो वो शहर का नाम बड़ा भूतपुरी, और भगवान अनंत देव ने आशीर्वाद दिया, आप चिंता मत करो, भविष्य में स्वयं प्रकट होके सारे जो भूत प्रेत जैसे लोग होंगे उन सबको मैं इस जगह प्रकट होकर उद्धार करता हूं। इससे स्वयं अनंत देव जो है रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए भूतपुरी में। ये स्टोरी है, ऐसे स्मरण में आए तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि शिवजी को जरा सा ही पसंद नहीं अगर कोई व्यक्ति कृष्ण प्रति अपराध करता है, कृष्ण भक्ति प्रति अपराध करता है, कृष्ण भक्ति में जो मदोन्मत रहता है, उन भावों को अगर कोई समझ नहीं सकता है, बिना समझे उस प्रति अपराध कर देता है, शिवजी को जरा पसंद नहीं होता है। इससे हमेशा शिवजी जो है क्या करते रहते हैं, इत्यादि नामामृत पानमत्त ब्रिंगादिपा अखिल दुख हंत्रे, अखिल दुख हंत्रे। देखिये शिवजी के विषय में जो भी जानना है ना, ये आठ श्लोक है जो शिवाष्टकम के नाम पे प्रसिद्ध है, जो शिवजी में स्वयं भुवनेश्वर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भुवनेश्वर में उन्होंने गान किया, जो भुवनेश्वर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु शिवजी का प्रसाद को भी स्वीकार किया। बाद में श्री नारदादे सतते सुगोप्या, नारदादि महान मुनिगण क्या करते हैं, शिवजी का आराधना करते हैं और जिज्ञासा करते हैं। तेब्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाया, उन सबको हरि भक्ति का जो सुख है वो प्रदान करते हैं। शिवाय सर्व गुरवे नमः, सारे लोगों के गुरु हैं। इस जीव इस संसार में किसी भी प्रकार का जीव लेके आओ, जो ब्रह्मा जी से लेके कीड़े मकोड़ों तक, और भूत प्रेत से लेके अन्य जितने भी एकदम बिल्कुल तमसिक हो, राजसिक हो, किसी प्रकार के जीव, हर प्रकार के जीवों के लिए शिव जी ने शास्त्र प्रदान किया। तो आखिर में कहा गया, श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय तन प्राणनाथाय रस प्रदाय, तत्प्राणनाथाय रस प्रदाय। कृष्ण प्रेम का रस को हमेशा गौरी को प्रदान करते हैं। सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, सदा हमेशा उत्कंठता से क्या करते हैं, गोविंद लीला को गान करते हैं। और गोविंद लीला गान प्रवीणाय नमोस्तु तुभ्यम, वैसे जो गान प्रवीणाय, शिव जी जो है वो गान गाने में बहुत प्रवीण है, एक्सपर्ट है। आप जब हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार की तरफ आगे जाओगे, रुद्रप्रयाग करके एक प्रयाग आता है, मंदाकिनी अलकनंदा का प्रयाग है। उधर नारद जी ने खूब तपस्या किया, उनको कृष्ण को प्रसन्न करना था, क्योंकि कृष्ण को अपराध कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ओ लक्ष्मी जी के विवाह कहूंगा, मैं बहुत सुंदर बनूंगा, आपको स्टोरी मालूम है ना। उन्होंने शाप दे दिया, हे मैंने शाप दे दिया, उस अपराध को कैसे मैं शांत करूं। तो इस पर स्मरण करते हुए नारद जी ने सोचा, मुझे अगर करना है अपराध का क्षमा याचना करना है तो गान करके मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। तो गान करने की सिद्धि कहां से प्राप्त करूंगा। रुद्रप्रयाग में नारद जी आए और उन्होंने खूब तपस्या किया, शिवजी प्रकट होके, तो शिवजी ने नारद जी को गान का जो गांधर्व विद्या प्रदान किया। क्यों, शिवजी जो है गान प्रवीणा, इतना सुंदर गाते हैं शिवजी, गान प्रवीणाय, वो गान का वो प्रवीण है, गान प्रवीणाय नमोस्तु तुभ्यम, वैसे जो गान प्रवीण है शिवजी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वैसे तो इसमें नवा श्लोक नहीं है जहां इसका वर्णन है। जो भी इस अष्टकम को गान करता है, एतत् शिवाष्टकम पठेत् पुण्यः, जो शिवाष्टकम उच्चारण करता है, गोविंद लभते रतिम, भगवान कृष्ण के प्रति रति प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होता है, करके आशीर्वाद दिया गया है। यानी शिवजी को वास्तविक रूप में अगर कोई गुणगान करता है तो उसको गोविंद की भक्ति प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति जो है बड़ा दृढ़ता से प्राप्त होता है। वैसे तो कृष्ण जी का गुणगान तो हमने किया, खास करके अनेक गुणों में, इस संसार में किसी का कितना भी गुण लीजिए, सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है दया, दया से बढ़कर कोई गुण नहीं है। जब भगवान स्वयं अनेकों गुणों को तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन दया नामक गुण को प्रकाशित करते हैं तो उनको सर्वोच्च स्वरूप प्राप्त होता है, वह चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण। मधुरिमा को प्रकाशित करते तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण स्वयं राधारानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं, तब उनका स्वरूप को सर्वोच्च माना गया है। जो सर्वोच्च स्वरूप में सर्वोच्च चीज प्रदान करते हैं, अर्पित चरिमचनाथ कारुण्यावतीर्ण करो, आज तक जो चीज अर्पण नहीं किया गया वैसा चीज को अर्पण करते हैं, जब कारुण्य स्वरूप को धारण करते हैं, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदान्य, अद्भुत दया, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदान्य। तो वही जो कारुण्य है, वदान्य तजा है, वो शिवजी प्रकाशित कर रहे हैं। शिवजी को कोई जरूरत नहीं था। तो पार्वती सोचती होंगी बनी मन में, शिवजी आप तो आत्माराम हैं, आत्माराम होने के नाते आप मनी मन में कृष्ण का भजन करते हो, आनंद को अनुभव कर रहे हो, आपको तो इस संसार का कोई होश ही नहीं है। आत्माराम होते हैं, उनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। यत्यात्मर्थिवस्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्नेव आत्मसंतुष्टः तस्य कार्यम् न विद्यते, उनका कोई कार्य, कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, भगवद्गीता में भगवान ने कहा। लेकिन आप आत्माराम होने के नाते आप तो अपने भजन में मग्न रहो, इस संसार से आपको क्या लेना देना, कोई प्रश्न उठा सकता है। इस प्रश्न के जवाब में इस श्लोक को, आज की श्लोक को उच्चारण किया जा रहा है। शिवजी कहते हैं, प्राण ही स्व प्राणिन पांति साधवहा। साधवहा साधुओं का लक्षण क्या होता है, प्राण ही अपने प्राण को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके लिए, प्राणिन पांतहा, प्राणिन इन जीवों को पांतहा रक्षा करने के लिए वो क्या करता है, प्राण ही सही ही अपना प्राण को भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है, एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने जीवन का खतरा, एट इवन एट द रिस्क ऑफ देयर ओन टेम्पररी लाइफ, अपने प्राण को भी खतरे में डाल के दूसरों को खतरे से बचाने का स्वभाव साधु का रहता है, क्योंकि दूसरों का दुख देख के वो सहन नहीं कर सकता। इधर प्रभुपाल देखते हैं वैष्णव का जो स्वभाव है पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख के वो सहन नहीं कर सकता, दूसरों को दुख देखे वो स्वयं दुखी हो जाता है। कितना दुखी होता है उसका वर्णन रामायण में प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी रामायण राम भगवान रामचंद्र के गुणों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूसरों का दुख को देख के भगवान रामचंद्र दुखी होते थे। कितना दुखी होते हैं, वृषम दुखिता, कितना दुखी होते थे, वो जितना दुखी होते हैं उससे ज्यादा दुखी होते हैं। कब तक दुखी होते हैं, वो दुख का निवारण तो कर दिया, वो सुखी हो गया, सुखी होने के बाद भी ये व्यक्ति या ये वैष्णव जो हैं भगवान रामचंद्र जो हैं वो दुखी होते हैं। कैसे, मातृवत, माता का नाम दिया, माँ, माँ का स्वभाव है। जब बच्चा जो खेल कूद में क्या होता है, कभी कभी वो चोट लग जाता है, रोना शुरू करता है, जब रोना शुरू करता है बच्चे को तो ज्यादा दुख नहीं लगा। बचपन में हम सबको मालूम है हमने बहुत नाटक किया है कि नहीं, बच्चा कभी नाटक भी करे थोड़ा सा दुख लगता है लेकिन रोना तो बहुत ज्यादा करता है। लेकिन माँ ये नहीं सोचती नाटक कर रहा है बच्चा, वो सोचती बहुत ज्यादा दुख लगा होगा, हड़बड़ा जाती है, वो बच्चा जितना दुखी होगा ना उससे ज्यादा दुख को माँ अनुभव करती है। ठीक है, दवाई ला के दिया, सब शांत किया, सब होने के बाद बच्चा ठीक हो गया। अब ये घटना घटी है, करीबन बच्चा जो 5-6 साल का था उस समय में था, बाहर खेलने गया तो उसको चोट लगा, खून आए, माँ ने अपने स्वयं अपनी साड़ी फाड़ के सब कुछ किया, ठीक किया, वो बुरा एकदम बिल्कुल, माँ उस बच्चे से ज्यादा दुखी हो गई। लेकिन कोई प्रश्न पूछता है कब तक, बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, बड़ा ऑफिसर बन गया, मिलिट्री में काम करना शुरू किया, 22-25 साल का कमांडो भी बन गया, वो गांव में आता है बच्चा, वो सूट बूट पहन के आया, वो बूट पहन के आया, मिलिट्री वस्त्र पहन के आया, भागो दिखाने के लिए मिलिट्री वाला हूं, और मिलिट्री वाले फटाफट चलते हैं ना, वो फटाफट चलना शुरू किया। माँ बोलती है याद है तुमको जो 5 साल का था, इतना चलते चलते गया था, भागते भागते गया था, गिर गया था, और फिर तुरंत रोना शुरू कर देती है माँ। देखो यानी 20 साल हो गया, बच्चे वो बच्चा भी भूल गया, वो लड़का भी भूल गया, लेकिन माँ को अभी भी याद है। उस दुख का स्मरण करते हुए स्मृति, गत दुखम स्मृति, जो गुत समाप्त हो गया उस समय का दुख को स्मरण करते हुए माँ भी दुखी होती है। ये साधु का लक्षण है। परा दुख का दुखी, ये शब्द के अंदर एक गहराई है। कितना दुखी और कब तक दुखी, उतना दुखी जितना वो जिस दुखी व्यक्ति को देखता है उससे ज्यादा दुखी, और साथ साथ में कब तक, अरे रे वो सुखी होने पर भी वो जब उनका दुख था उसका स्मरण करने मात्र से दुखी होता है। मान लो कोई बच्चा सुखी है, परा सुख का, परा वर लोगों का सुख, दूसरों का सुख देके सुखी होना, वो कैसा, पितृवत परितुष्यति, पितृ पिताजी, पिताजी जो है बच्चे का सुख देके, सुख बच्चे का है, आनंद पिताजी का है। भले वो पिताजी बहुत दुखी है लेकिन बच्चे का सुख देके इतना सुखी हो जाता है, ये वैष्णव है। वैष्णव दूसरों को भजन में देखते हुए, कृष्ण को भक्ति में आनंद को अनुभव करते हुए देखते हुए वो क्या सोचता है, अपना जीवन को धन्य मानता है। ये शिवजी का स्वभाव है। वो दूसरों को दुख से निवारण करने के लिए, बचाने के लिए वो अपना प्राण को भी अपने कतरे में डालते हैं। ये शिवजी का स्वभाव है। आगे कहा गया है क्षणभंगुर ही, ये शरीर जो है क्षणभंगुर है, लंबा समय तो जीना तो है नहीं, लेकिन जब तक हम जीवित है ये शरीर तो मरने ही वाला है, तो ये शरीर को परोपकार मेवार्थम, ये शरीर केवल दूसरों के लिए है, इसको मानो ना मानो ये शरीर दूसरों के लिए ही बना है, ये अपने लिए नहीं है शरीर। देखिए मृत्यु के बाद क्या होता है शरीर, हिंदू है तो जला देते हैं, या जलाने के बाद भी तो कुछ बच जाते, कीड़े वाड़े खा जाते हैं, अगर कोई गंगा में फेंक देता वो मछलियां खा जाती है, अगर कोई पारसी है तो कोई वल्चर्स आके खा जाते हैं। ये शरीर जो है अन्य लोगों के लिए ही बना है, आप इसको अपना सुख के लिए कितना भी इस्तेमाल करो ये प्रकृति का नियम है, ये शरीर बना है दूसरों के लिए। इदम शरीरम परोपकार मेवार्थम, ये बात को जो समझ गया वो हमेशा सुखी रहेगा। किस शरीर को केवल दूसरों के सुख के लिए लगाओ, क्या है दूसरों का सुख, क्या है वो, है कृष्ण भक्ति ही एकमात्र सुख है। ये शिव जी अच्छी तरीके से जानते हैं। तब एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो शिव जी अच्छी तरीके से जानते हैं कृष्ण भक्ति ही एकमात्र चीज है जो दूसरों को हित करने वाले हैं, तो उन्होंने ये जहर को क्यों पी लिया? ऐसा लगता है शिव जी ने एक सामाजिक कार्य किया। शिव जी ने जहर को इसलिए पिया क्योंकि उनको मालूम है ये जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जहर है वो कुछ और जहर नहीं है, एक प्रतीक है। ये तो लीला तो सत्य है, प्रतीक है। क्या है प्रतीक? ईर्ष्या का प्रतीक है। इसलिए शिवजी कहते आगे की दो लाइनों में, बद्ध वैरिषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममाया। आत्ममाया भगवान की माया शक्ति के द्वारा मोहित होके सारे जीव क्या करते हैं? बद्ध वैरेषु भूतेषु, बद्ध होके ये ईर्ष्या के द्वारा बंधन में होते क्या करते हैं? दुश्मनी मोड़ के रखते हैं। मैं इससे जमता नहीं, इससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी। ज्यादा लंबा तो जीना नहीं है, लेकिन जिनके साथ जी रहे उनके साथ दुश्मनी बना के रखते हैं। इस प्रकार माया के द्वारा मोहित होते हुए मैं इसको दुश्मन मानता हूं, इसको दुश्मन मानता हूं, इसको दुश्मन मानता हूं, ये मेरा दुश्मन है। और कभी उससे प्रेम करते उसी जिनसे प्रेम किया उसी दुश्मनी मोड़ लिया। अस्तित्व में ये जो दुश्मनी जो है ईर्ष्या का प्रतीक है। शिवजी ने एक गौरी यानी पार्वती को कहते हैं ये ईर्ष्या है, अस्तित्व में ये जहर नहीं है। जहर मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जहर। हमारे हृदय में ईर्ष्या जहर का कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए कालिया के हृदय से सारे जहर को बाहर निकाला। इसका अर्थ क्या है? चलो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं ये जहर कुछ और नहीं है, वो ईर्ष्या है। हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या जो है, जो अन्य जीवों के रूप में प्रकट होता है, अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या के रूप में प्रकट होता है, तो ईर्ष्या का एकमात्र कार्य है, एकमात्र चीज है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो ये लीला जैसे हुआ, शिव जी को बुलाया गया था, कैलाश से बुलाया गया था। कैलाश से जब सारे लोगों ने, सारे देवताओं ने बुलाया, शिव जी ने क्या किया? जहर को पान किया। पान करने के बाद शिव जी एक स्थान में जाके बैठ जाते हैं। उनको लीला तो मालूम है, उनका कंठ लाल हो गया था, वो पूरा जहर जो है अंदर जाने ही वाला था। तुरंत पार्वती ने क्या किया, ये बात, ये लीला भागवत में वर्णन नहीं होता है, लेकिन मार्कंडेय पुराण में ये बात का वर्णन आता है कि पार्वती आगे तुरंत शिवजी का गला को उन्होंने पकड़ लिया ताकि वो जहर उधर रह जाए। लेकिन नरसिंह पुराण में वर्णन आता है नरसिंह देव ने उनको उधर ही धारण किया। वैसे लीलाओं पुराणों में लीला अलग अलग प्रकार का वर्णन होता है, उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात यह है कि शिवजी ने क्या किया, इसके बाद वो जाके एक पर्वत की ओर बैठ गए। उस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत। जब हरिद्वार जाएंगे निश्चित रूप में नीलकंठ पर्वत में जाइएगा। वो नीलकंठ पर्वत में जो जाता है उसको असलियत में बद्रीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे पुराणों में कहा गया है। नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ महादेव को दर्शन करना है। वो नीलकंठ महादेव जो है वो महादेव है, वो शिवजी है जो इस कालाहल को धारण करके उधर बैठ गए। तो शास्त्रों में वर्णन आता है नीलकंठ पर्वत में शिवजी करते क्या है। वैसे कल्याण कैलाश में अन्य जगह शमशान में शिवजी ध्यान करते हैं कृष्ण के ऊपर, लेकिन कृष्ण का नाम संकीर्तन, कृष्ण का नाम स्मरण से श्रेष्ठ है या कृष्ण का ध्यान से श्रेष्ठ है, इस बात को सिद्ध करने के लिए शिवजी नीलकंठ पर्वत में बैठ के वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं। पार्वती बड़े आतुर है, आतुर नहीं बल्कि बहुत विचलित है। अभी ये जो जहर पी लिया मेरे पतिदेव ने, क्या होगा क्या होगा, बड़े आतुरता के साथ पार्वती स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रही है कृष्ण से, और इधर शिवजी क्या कर रहे हैं? नाम संकीर्तन कर रहे हैं। नाम संकीर्तन का महिमा को गान कर रहे हैं शिवजी नीलकंठ के रूप में, नीलकंठ पर्वत के ऊपर। वो हरिद्वार से आप प्राय सीधा निकल जाते हैं बद्रीनाथ, लेकिन अगली बार कभी भी आप उस क्षेत्र में जाएंगे नीलकंठ महादेव का दर्शन करें, जहां शिवजी सारे संसार को किस प्रकार दया दिखाए, वैष्णव का स्वभाव क्या है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, ये होता क्या है, शिवजी ने एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया। तो ये शिवजी का वास्तविक महिमा है, अपने ही जीवन को खतरे में डालते हुए प्रचार किया, रिस्क लिया। उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अगर आधुनिक शिवजी अगर कोई है तो इस संसार में वो है श्री प्रभुपाद जी। पाश्चात्य में देश में जाना इससे बढ़कर कोई खतरा हो सकता है क्या? वैसे लोग भूत प्रेत भी ठीक है उनके सामने भूत प्रेत भी ठीक है, जब हिप्पियों का वर्णन सुनोगे ऐसा लगता है भूत प्रेत भी ऐसा नहीं करते होंगे। वैसे लोगों को जाके कृष्ण भक्ति देना ये कोई साधारण चीज नहीं है। नसीहत में वास्तविकता में शिवजी के अंदर जिस प्रकार की दया है वो दया को श्रील प्रभुपाद जी अपने हृदय में धारण करके जान को खतरे में डालते हुए रिस्क लेते हुए, इसलिए भक्तों को भले ही रिस्क लेना पड़े, भले ही हमको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, कोई भी हमको रिस्क को क्या बोलेंगे हिंदी में साहस जोखिम, हाँ जोखिम भी लेना पड़े, कितना भी जोखिम लेना पड़े, देखिए वो प्रचार करने जाना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हमारा शरीर क्षणभंगुर है, समय भी ज्यादा नहीं है, उपयोग किसी काम में आता है बहुत अच्छी बात है। इफ माई लाइफ इज फॉर सम अदर्स बेनिफिट माई लाइफ इज सक्सेसफुल। अगर मेरा शरीर मेरा जीवन अगर किसी और का काम का होता है बहुत अच्छी चीज है। ये धारणा जो है इससे बहुत कृपा मिलती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, हमारे आचार्यों का वैष्णवों का आशीर्वाद मिलता है जिसके द्वारा हमारी कृष्ण भक्ति बन जाए। प्रचार करने जाएंगे प्रचार तो दूसरी बात है, लेकिन हमारा उद्धार जरूर हो जाएगा। दूसरों को उद्धार करने का प्रयास करते हुए दूसरों का उद्धार हो ना हो हमारा हो जाएगा, क्योंकि आचार्यगण देखते हैं चलो ये दया दिखाया किसी के ऊपर, चलो उसके ऊपर मैं दया कर देता हूं। अगर दया नहीं दिखाओगे दया का पात्र नहीं बनोगे। तो ये सिद्धांत जो है हम आज के प्रसंग से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न या टीका कोई टिप्पणी है तो पूछिए। हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।